بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم آپ کے لیے جلد نمبر 21 کے ناول جاسوسی دنیا کے ناول نمبر 67 طوفان کا اخوا ریکارڈ کر رہے ہیں. اس کتاب کے مصنف ہیں ابن صفی. یہ کتاب کتبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. مزید کتابوں کی ریکارڈنگ کے لیے آپ اس نمبر پر رابطہ کریں 03212138225 یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.qurtaba.org. پیش رس. جاسوسی دنیا کا خاص نمبر طوفان کا اخوا ملاحظہ فرمائیے. ایک صاحب نے اپنے خط میں تصوف کے بارے میں خاصی طویل گفتگو فرمائی ہے. وہ تصوف کو افیون سمجھتے ہیں اور اس سے ہار کھاتے ہیں. انہوں نے پیری مریدی اور خانقاہوں کا جو نقشہ کھینچا ہے وہ اپنی جگہ درست. آہستہ آہستہ لوگ مقاصد کو بھولتے جا رہے ہیں اور محض رسومات کو اولویت دے دیتے ہیں. یہ بھی نظام فطرت ہی کے تحت ہوتا ہے. کچھ دن گزرنے کے بعد ہر شے کی شکل بگڑ جاتی ہے. آدمی ہی کو دیکھیے, جوانی میں کچھ نظر آتا ہے اور بڑھاپے میں کچھ. کبھی کبھی تو جوانی کی شکل سے ہی ہلکی سی مشابہت بھی باقی نہیں رہتی. تصوف نے خلافتی راستہ کے بعد مسلمانوں کے درمیان راہ پائی تھی اور شنشائیت کے خلاف ایک پرامن عوامی تحریک اختیار کر لی تھی. اس کی بنیاد ہمیں از اوسط کے نظریے پر رکھی گئی تھی. رہی ہمیں اوسط کی بات تو یہ شہنشاہیت کے حامیوں کی چلائی ہوئی جوابی تحریک تھی, جس کا مقصد یہ تھا کہ شہنشاہوں کے مظالم کے خلاف احتجاج تک نہ کیا جا سکے. جب سب کچھ وہی ہے تو ظالم بھی وہی اور مظلوم بھی وہی, پھر غل غپاڑا کیسا. خاموشی سے ظلم سہو اور ہمیں اوسط کا دم بھرتے جاؤ. افو, آپ کے خط نے تو پچی ہی بدلوا دی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تصوف کے بارے میں مزید مطالعے کے لیے سنی سنائی باتوں میں کیا رکھا ہے. کچھ نہیں تو کم از کم حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ کی کتاب کشف المحجوب بھی پڑھ لیجئے. ویسے ہم بیچارے اس قابل رہاں کہ ایسے موضوعات پر گفتگو کر سکیں. آپ نے ایک بات پوچھی تھی سو ہم اپنے ناقص فہم کے مطابق یہ چند سطور لکھتی. والسلام ابن صفی. لال اوبارا. کیپٹن حمید نے کار روکی اور نیچے اتر کر ادھر ادھر دیکھنے لگا. چاروں طرف اونچی اونچی چٹانوں کے سلسلے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے. وہ چند لمحے یوں ہی کھڑا رہا, پھر کار سے ربڑ کا ایک غبارہ نکالا جس میں گیس بھری ہوئی تھی. غبارے کا رنگ سرخ تھا. کار اس نے سڑک سے اتار کر دو چٹانوں کے درمیان کھڑی کی تھی. ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ جگہ پہلے ہی سے تیار رکھی ہو, کیونکہ یہاں زمین ہموار تھی اور اس سے آگے کی ڈھلان تین چار بڑے بڑے پتھروں سے بند کر دی گئی تھی. وہ غبارہ لیے ہوئے سڑک پر آیا اور پھر بڑی پھرتی سے سڑک پار کی. دوسرے لمحے میں وہ دوسری جانب والی ڈھلان میں اتر رہا تھا. اس کے جسم پر خاکی قمیض اور خاکی برجیز تھے اور پیروں میں گھٹنوں تک پہنچنے والے رائڈنگ بورڈ پر سر پر براؤن چمڑے کا خود منڈا ہوا تھا, جس میں چمڑے کی تہوں کے درمیان فولاد کی ٹوپی تھی. وہ اس طرح چٹانوں کی اوٹ لیتا ہوا ڈھلان میں اتر رہا تھا جیسے دیکھ لیے جانے کا خدشہ ہو. سورج مغرب میں جھکنے لگا تھا اور دھوپ کی رنگت نارنجی ہو چلی تھی. اگست کی ہوا میں بھی اتنی خنکی ضرور تھی کہ حمید محنت نہ کر رہا ہوتا تو اس کے دانت بچنے لگتے. کچھ دور چلنے کے بعد وہ بائیں جانے مڑ گیا. یہ ایک تنگ سا درا تھا. دونوں چٹانوں کا درمیانی فاصلہ 2 فٹ سے زیادہ نہ رہا ہوگا, لیکن آگے چل کر وہ بدتر کشادہ ہوتا گیا. اختتام پر تو دونوں چٹانوں کا فاصلہ 20 فٹ سے بھی زیادہ نہ تھا. یہ اختتام ایک ایسی چٹان پر ہوا تھا جس کی اونچائی راستے کی سطح سے تقریباً 5 فٹ ضرور رہی ہوگی. حمید بہت احتیاط سے دوسری طرف جھانکنے لگا. یہاں بھی ایسا ہی معلوم ہو رہا تھا جیسے دیکھ لیے جانے کا خدشہ لاحق ہو. دوسری طرف نشیب ہی نشیب تھی اور اس کے بعد کی چڑھائی پر وہی اسی سڑک کا ایک حصہ نظر آ رہا تھا جس پر وہ گزر کر یہاں پہنچا تھا. اس جگہ سے اس کا فاصلہ 3 فرلانگ سے زیادہ نہ رہا ہوگا, لیکن حمید اگر دوبارہ کار پر بیٹھ کر سڑک کے حصے پر پہنچنے کی کوشش کرتا تو اسے کم از کم 4 میل کا چکر ضرور لگانا پڑتا. इसलिए उसने गुब्बारा बाएं हाथ में पकड़ते हुए दाहिने हाथ से दूरबीन निकाली और उसकी बजीज की जो उसकी बजीज की जेब में मौजूद थी। सड़क उसकी नजरों में और ज्यादा वाजे हो गई। दूरबीन का फोकस मौजू करता रहा। वो दरअसल इस सुरंग की तरफ देख रहा था जिसमें दाखिल होकर सड़क नजरों से गायब हो गई थी। अक्सर वो कलाई पर बंधी हुई घड़ी की तरफ भी देख लेता था। दफतन उसने गैस से भरा हुआ गुब्बारा छोड़ दिया। वो तीर की तरह ऊपर खला में चढ़ता चला गया। दूर सुरंगों से खचरों की एक कतार बरामद हो रही थी। हमीद गुब्बारा छोड़कर फौरन ही वहां से हट गया। अब वो उसी रास्ते पर चल रहा था जिस पर पहुंचा था। खच्चरों पर सामान लदा हुआ था। उनकी तादाद 40 से किसी तरह कम नहीं थी। हर खच्चर पर एक आदमी भी मौजूद था। अगले खच्चर वाले की नजर फिजा में बुलंद होते गुब्बारे पर पड़ी और उसके हाथों से खच्चर की बाग छूट गई। फिर वो संभला और दोनों हाथ उठाकर उन्हें मजनूमाना अंदाज में हिलाने लगा। फिर यक बैग पूरे काफिले में अबतरी और बदनजमी फैल गई। वो लोग जिधर से आए थे उधर ही भागने लगे। खच्चरों की कतार दरहम बदरहम हो गई। सुरंग में घुसकर दूसरी तरफ निकले वो दूसरी तरफ निकले। खच्चर भागते रहे। अचानक एक जीप कार सामने आती दिखाई दी। उस पर एक छोटा सा झंडा लहरा रहा था। खच्चर वालों में से किसी ने चीख कर कहा, ठहर जाओ। बदिक्कत तमाम खच्चरों को रोका जा सका। जीप कार उनके दरमियान उनके करीब आ रुक गई। उसे एक बिल्डाक किस्म का आदमी ड्राइव कर रहा था और तन्हा था। अपनी हैयत के एतबार से वो कोई अच्छा आदमी नहीं मालूम होता था। उसके चेहरे पर सख्त कीड़ी के आसार थे। भारी भरकम जबड़ा उन आसार को कुछ और ज्यादा तकलीफ सी देता मालूम होता था। क्यों, ये क्या है, वो उसीली आवाज में चीखा। माधु, तुम कहाँ मर गए? दफतन एक आदमी ने अपना खच्चर आगे बढ़ाया और जीप के कार के करीब पहुंचकर बोला, लाल गुब्बारा। लाल गुब्बारा? जीप वाले ने के लहजे में हैरत थी। लाल गुब्बारा जनाब, माधु ने फिर कहा, आज तक ऐसा नहीं हुआ, तुम्हें वहम हुआ होगा, जीप वाला बोला। माधु ने मुड़कर आसमान की तरफ देखा। जीप वाले की नजर भी उठ गई। सुर्ख गुब्बारा आहिस्ता आहिस्ता तारा होता जा रहा था। ये क्या मुसीबत है, जीप वाला बुड़बुड़ाया और ठीक उसी तरह चारों तरफ से फायर हुए। लेकिन शायद ये हवाई फायर थे और काफलों वालों को सिर्फ इतना बताने के लिए किए गए थे कि वो चारों तरफ से घेर लिए गए हैं। जीप वाला संभल कर बैठ गया। वो चारों तरफ बिखरी हुई चट्टानों को कीना तो उस नजरों से देख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर सरासिंगी के आसार नहीं थे। उसने हाथ उठाकर इशारे से काफलों वालों को नज्म जब्त कायम करने को कहा, फिर चारों तरफ देखने लगा। दफतन चारों तरफ उसे मुतादित टोपियां सुर्ख टोपियां नजर आईं और फिर पुलिस कांस्टेबल बकायदा तौर पर उनके सामने आ गए। उनकी राइफलों का रुख काफले की जानिब था। सबों ने अपना हाथ ऊपर उठा दिए। पुलिस पार्टी की कयादत कैप्टन हमीद कर रहा था। जरा ही सी देर में पूरा काफला घेर लिया गया। पुलिस कांस्टेबल खचरों के करीब पहुंच गए। तुम लोग खच्चरों से सामान उतार कर सड़क पर डाल दो, हमीद ने बुलंद आवाज में कहा, वरना कोई लाशें गिनना भी पसंद ना करेगा। आखिर क्यों, जीप वाला नीचे उतरते हुए बोला, बकवास बंद करो, तुम कौन हो? ओह सुनिए तो सही जनाब, आप कफा क्यों होते हैं, जरा अलग चलिए, आपको सब कुछ समझा दूंगा, जीप वाले ने मुस्कुरा कर कहा। मैं राशि नहीं हूँ, लिहाजा जो भी कहना है यही कहो, हमीद ने खुश्क लहजे में कहा। अच्छा तो आप जो कुछ करने भी जा रहे हैं उसके लिए आपको पछताना पड़ेगा। हाँ आ, मैं अच्छी तरह समझता हूँ इसकी पुश्त पर कोई बारसोख आदमी होगा, हमीद ने तंजिया लहजे में कहा। मुझे जो कुछ कहना था कह चुका, जीप वाला घुसीली आवाज में बोला। अरे, हमीद ने खचरों को मुखातिब किया, क्या तुमने सुना नहीं, सारा सामान सड़क पर उतार दो। खचरों से बड़े बड़े थैले गिराए जाने लगे और जीप वाला दांत पीसता रहा। कर्नल परिधि ने फाइल एक तरफ डाल दी और जेब से डायरी निकालकर उस पर कुछ लिखने लगा। ऑफिस का वक्त खत्म हो चुका था और दूसरे लोग जा चुके थे, लेकिन फरीदी का कमरा अभी खुला हुआ था और बाहर चिपरासी इसी स्टॉल पर बैठा घूम रहा था। दफ़तन फोन की घंटी बजी और फरीदी ने कलम रखकर रिसीवर उठा लिया। हेलो कर्नल साहब, दूसरी तरफ से आवाज आई। हाँ मैं ही हूँ, मैं अमर सिंह हूँ जनाब। हाँ कहो क्या बात है। कप्तान साहब का तार है, क्या खबर है? उन्होंने इन स्मगलरों को पकड़ लिया है लेकिन वो खतरे में है। क्या मतलब? और कुछ नहीं मालूम हो सका जनाब, तहरीर इतनी ही है। मैंने इन स्मगलरों को पकड़ लिया है लेकिन मैं खतरे में हूँ। तार कहाँ से आया है? टेकमगढ़ से। ओह अच्छा, देखो अमर सिंह, तुम मेरे लिए रात वाले जहाज की एक सीट बुक करा दो। कोशिश यही करो कि एक सीट फौरी तौर पर बुक हो जाए। बहुत बेहतर जनाब, फरीदी ने सिलसिला मुनकिता किया। उसकी पेशानी पर सलवटें उभर आई थी और आंखों से गहरा तफक्कुर मुतशर्फ था। उसने डायरी बंद करके जेब में डाल ली और उठ गया। चिपरासी ने बहुत लहक कर दरवाजा खोला। उसे शायद तवक्का नहीं थी कि फरीदी इतनी जल्दी उठ जाएगा। घर पहुंच कर भी वो सोच में डूबा रहा। तकरीबन 6 बजे वो एयरपोर्ट जाने की तैयारी कर रहा था। फोन की घंटी बजी, फिर रिसीवर उठाते ही दूसरी तरफ से बोलने वाले की शख्सियत से वाकिफ हो गया। वो महकमे सुराख रसानी का BIG था। फरीदी को भी इस नावक्त दखल अंदाजी पर हैरत थी लेकिन उसने अपनी हैरत जाहिर नहीं होने दी। कैप्टन हमीद को टेकमगढ़ से वापस बुला लो, DIG ने कहा। ये केस दूसरों के सपोर्ट कर दिया गया है। मगर ये तब्दीली क्यों हुई जनाब? तुम जानते हो इस किस्म की तब्दीलियां अमूमन उसी वक्त होती हैं जब उनके लिए ऊपर से अहकाम आए। मैं जानता हूँ, बस तुम उसे वापस बुला लो। बेहतर है मैं इस जहाज से टेकमगढ़ जाऊंगा, जा रहा हूँ, जो 9 बजे रात को यहाँ से जाता है। क्यों? तुम क्यों जा रहे हो? हमीद खतरे में है। मैं नहीं समझा। उसका तार आया है, उसने इन स्मगलरों को पकड़ लिया है लेकिन खुद खतरे में है। ओह देखो, मेरा ख्याल है ये तब्दीली महज इसीलिए हुई है कि तुम लोग इस मामले में मदाखलत ना करो। तो क्या मैं हमीद को मर जाने दूं? फरीदी ने ऊंचीली आवाज में कहा। तुम नहीं समझे, मैं ये कह रहा था कि तुम हमीद को साथ लेकर खामोशी से वापस आ जाओगे, बशर्त ये कि मुझे खामोश रहने दिया गया। देखो भाई, मैं तुम्हारे भले ही को कह रहा हूँ, मुझे हैरत है, पहले कभी आपने इस किस्म की गुफ्तगु नहीं की। DIG ने दूसरी तरफ से सिलसिला मुनकिता कर दिया। फरीदी ने एक झटके के साथ रिसीवर क्रेडल पर डाल दिया और मेज के करीब ही रुक कर सोचने लगा। कुछ देर बाद उसने फिर रिसीवर उठाकर किसी के नंबर डायल किए। हेलो, दूसरी तरफ से आवाज आई। कौन है? दर्जन, तुम कौन हो? फरीदी ने कोई जवाब दिए बगैर रिसीवर रख दिया। अब वो फिर नंबर डायल कर रहा था। राब्ता कायम होते ही उसने कहा, नंबर 3। यस सर, दूसरी तरफ से आवाज आई। सांगली हाउस में दर्जन नामी आदमी पर नजर रखो, वो इमारत में मौजूद है। वेरी वेल सर, दूसरी तरफ से आवाज आई और फरीदी ने सिलसिला मुनकिता कर दिया। उसने रिसीवर रखा ही था कि यक बैग घंटी बज उठी। हेलो, फरीदी ने रिसीवर उठाकर कहा। कर्नल फरीदी, दूसरी तरफ से आवाज आई। फरीदी स्पीकिंग, फरीदी ने कहा लेकिन दूसरी तरफ से सिलसिला मुनकिता कर दिया गया। फरीदी ने रिसीवर बड़ी तेजी से रखा और दूसरे कमरे में चला आया। ये कमरा दरअसल उसका असलह खाना था। उसने एक रिवॉल्वर मुंतखब किया और कारतूसों का एक पैकेट जेब में थोसा हुआ बाहर निकल आया। फिर उसने वो सामान भी वहीं छोड़ दिया जो साथ ले जाने के लिए इकट्ठा किया था, लेकिन वो अपनी चेक बुक निकालना नहीं भूला। बरामदे में आकर ड्राइवर को आवाज दी। थोड़ी देर बाद ही कार फाटक से बाहर निकली। एयरपोर्ट, फरीदी ने ड्राइवर से कहा। रवानगी से पहले उसने मुलाजमों को हिदायत कर दी कि उसकी वापसी तक सारे खतरनाक किस्म के कुत्ते हर वक्त खुले रखे जाएं। कार तेजी से एयरपोर्ट की तरफ बढ़ती रही लेकिन फरीदी इससे भी लाइल नहीं था कि ताकुब बराबर जारी है। पिछली कार की हेडलाइट्स साफ नजर आ रही थी। फरीदी ने जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया। वो अब भी पिछली कार पर नजर जमाए हुए था। दफतन खुद उसकी कार जबरदस्त झटके के साथ रुक गई। फिर उसे एहसास हुआ कि वाकया क्या था। उसकी गाड़ी से एक दूसरी कार एक सिर्फ एक फुट के फासले पर खड़ी थी और उसका ड्राइवर बुरी तरह गालियां बक रहा था। परिधि का ड्राइवर कुछ गर्म हुआ ही था कि उस कार से दो तीन आदमी नीचे कूद पड़े। खींच लो साले को, एक ने कहा। गाड़ी बैक करो, फ्रेडी ने अपने ड्राइवर से कहा, लेकिन अब बैक करने की भी जगह नहीं रह गई थी क्योंकि ताकुब करने वाली कार पीछे आकर रुक गई थी और उसका फासला भी फरीदी की कार से शायद एक ही फुट था। फरीदी सोचने लगा, काश वो खुद ही ड्राइव कर रहा होता, लेकिन वो ड्राइवर भी फरीदी ही का था। उसने इतनी ही जगह में गाड़ी मोड़कर बड़ी बेदर्दी से इन लोगों पर चढ़ा दी जो अगली कार से उतरे थे। फरीदी की कार का अगला हिस्सा अगली कार से टकराया। गाड़ी जरूर मुड़ी लेकिन सड़क से नीचे ना उतर सकी। वैसे वो बौखला कर काफी दूर हट गए थे जिन्होंने अगली कार से उतरकर ड्राइवर पर हमला करना चाहा था। फरीदी के लिए इतना ही मौका काफी था। उसने कार से छलांग लगा दी। पिछली कार से बेक वक्त कई फायर हुए मगर ऐसा ही मालूम होता था जैसे फरीदी अंधेरे के अक्का समंदर में तैरता सड़क के बाएं जाने वाले नशे में उतर गया हो। सड़क सुनसान पड़ी थी और गालिबन इसी सन्नाटे की वजह से उसे घेरा गया था। दोनों कारों से उतरने वाले नशेब में दौड़ते चले गए। फरीदी के ड्राइवर को जब इत्मीनान हो गया कि अब दोनों कारों में एक भी आदमी बाकी नहीं तो वो नीचे उतरा, अगली कार को धकेलता हुआ पीछे किया और इतनी जगह बना ली कि वो बआसानी अपनी गाड़ी मोड़कर आगे निकाल सके। वो फरीदी का ड्राइवर था इसलिए उसे कम अज कम इतना सलीका तो था ही कि दोनों कारों का एक एक टायर बेकार करके उन्हें मजीद ताकुब के काबिल न रहने देता। उसे यकीन था इसी सड़क पर कहीं न कहीं फरीदी से लाजमी तौर पर मुलाकात होगी, लिहाजा वो गाड़ी को आगे बढ़ा ले गया। इससे पहले भी वो अक्सर मोर्गों में फरीदी का साथी रह चुका था। हंगामा। इसी रात की बात है, कैप्टन हमीद टिकमगढ़ के एक नाइट क्लब में रंगरलियां मना रहा था। उसकी रंगरलियां वहां भी जारी रहती थी लिहाजा जहां कदम कदम पर मौत का सामना होता था, लेकिन ये बताना दुश्वार था कि वो ऐसे मौके पर खुद को फरेब देने लगता था या हकीकतन वो इतना ही निडर और लापरवाह था। इन स्मगलरों को गिरफ्तार करने के बाद वो अब तक उस पर दो हमले हो चुके थे, लेकिन हाजिर दिमागी आड़े आई थी वरना इस वक्त उसकी रूह आलम अरवा में भीख मांगती फिर रही होती। उसे टेकमगढ़ में उस वक्त ठहरना था जब तक फरीदी उसे वापसी की हिदायत ना करता। इन स्मगलरों को पकड़ने के लिए उसे खासी जहनी जिमनास्टिक करनी पड़ी थी। उसने कई दिनों तक छुप कर इन रास्तों की निगरानी की थी और इस नतीजे पर पहुंचा था कि स्मगलर बआसानी पकड़े जा सकते हैं, लेकिन शायद सरहद के मुहाफिज दीदा दास्ता उसकी तरफ से गफलत बरतते थे। इन गिरफ्तारियों के सिलसिलों में गुबारों वालों का मामला काफी दिलचस्प साबित हुआ था। हमीद का ख्याल था फरीदी इस कारनामे पर दाद दिए बगैर नहीं रह सकेगा। दरअसल इन गुबारों की वजह से हमीद को इस रास्ते का इल्म हो सका था जिससे स्मगलर माल ले जाते थे, वरना इन पहाड़ों के काफले तो अलग रहे, पूरी पूरी पलटनों का ढूंढ निकालना आसान काम नहीं था। तो क्या वो स्मगलर अहमद थे, खुद ही अपनी गर्दन में फांसी का फंदा डालना चाहते थे? ये बात हमीद की समझ में न आ सकी थी। किस्सा ये था कि एक दिन वो इन्हें स्मगलरों की तलाश में टेकमगढ़ के पहाड़ों में भटकता फिर रहा था कि अचानक उसे फिजा में सब रंग का एक गुब्बारा उड़ता हुआ नजर आया। पहले वो उसे नजरअंदाज कर दिया लेकिन फिर सोचा कि इस वीराने में गुब्बारा किसने उड़ाया। इस हिस्से में तो शायद टूरिस्ट भी नहीं आते थे, इसलिए वो कुछ उलझन में पड़ गया। फिर उसने फैसला किया कि इस गुब्बारे के मुतालिक छानबीन करनी चाहिए। थोड़ी ही देर बाद उसने खच्चरों की टापों की आवाजें सुनी जो आहिस्ता आहिस्ता करीब आती जा रही थी। वो एक चट्टान के पीछे छुप गया। खच्चरों का काफला उसके सामने आ चुका था। वो एक ऐसे आदमी को देख रहा था जिसके हाथ में दूरबीन थी और वो गालिबन उसी सब गुब्बारे को देख रहा था। उसने बराबर चलने वाले गालिबन उस गुब्बारे के मुतालिक कुछ कहा भी था। बस उसी जगह से हमीद कामयाबी की राह पर लगा था, वो कई दिन तक इस राह का जायजा लेता रहा जिससे काफिला गुजरा करता था। उसने जो चीज खसूसियत की मार की वो यही थी कि सबसे पहले फिजा में सब फुबारा बुलंद होता है, फिर उसके बाद ही काफिला किसी तरफ से नमूदार होता है। जिस दिन सब फुबारा ना दिखाई देता उस दिन वो राह सुबह से शाम तक वीरान ही पड़ी रहती। हमीद ने उस पर काफी गौर से तहिया किया, वो सुर्ख गुब्बारा उड़ाकर उन्हें आजमाएगा, लिहाजा उसने यही किया। स्मगलर सुर्ख गुब्बारे को खतरे का निशान समझकर भाग निकले और उन्हें वो सुर्ख गुब्बारा देखकर हैरत भी हुई क्योंकि शायद उनके लिए ये पहला इत्तफाक था और इससे पहले कभी उन्हें सुर्ख गुब्बारा नहीं दिखाई दिया था। बहरहाल उनकी गिरफ्तारी के बाद हमीद ने लाखों रुपए का ऐसा सामान बरामद किया जो गैर कानूनी तौर पर मुल्क के बाहर ले जाया जा रहा था। लेकिन ये और बात है कि उसी दिन उसी रात उस पर कातलाना हमला हुआ, उसके बाद ही स्मगलरों पर सख्ती की जाने लगी। और इस शख्स का नाम कि वो इस शख्स का नाम जाहिर कर दें जो स्मगलिंग की पोस्ट पर था, लेकिन उन्होंने कुछ बताने से इनकार कर दिया। खुद हमीद भी उनकी जुबानें ना खुलवा सका। फिर इस तरीके को फजूल समझकर उसने दूसरी राह अख्तियार की। रमेश और चंद दूसरे सादा लिबास वालों को अपनी हिफाजत पर मामूर करके खुले आम निकलने लगा, लेकिन जब उसने ये रवैया अख्तियार किया तीसरे हमले की नौबत नहीं आई थी। उस वक्त भी वो टेकमगढ़ के एक बारौनक नाइट क्लब में बैठा रक्स करते हुए जोड़ों को घूर रहा था और इस राउंड के खात्मे पर उसका इरादा था कि किसी खूबसूरत सी लड़की से हम रक्स बनने की दरख्वास्त करेगा। लेकिन वो कुछ थोड़ा सा बोर भी हो रहा था क्योंकि कासिम ने यहाँ भी उसका पीछा नहीं छोड़ा था। इत्तफाक से उस वक्त कासिम भी फरीदी की कोठी में मौजूद था जब हमीद टेकमगढ़ के लिए रवाना होने वाला था। लिहाजा जिस दिन हमीद टेकमगढ़ पहुंचा उसके तीसरे ही दिन कासिम भी वहां मौजूद था। ये तो उसे पहले ही मालूम था कि हमीद का कयाम किस होटल में होगा। इस वक्त वो भी इसी क्लब में मौजूद था, लेकिन डाइनिंग हॉल में उसका ख्याल था कि पहाड़ों पर भूख और ज्यादा खुल जाती है लिहाजा उसकी खोपड़ी खुल गई थी और भूख का खुलने का मतलब कम अज कम उसके लिए तो यही हो सकता था कि वो एक मेज दबाए घंटों बैठा रहे। रिक्रिएशन हॉल में कई तगड़ी तगड़ी सी लड़कियां मौजूद थीं, लेकिन भूख खुल जाने पर उसे किसी तगड़े से बकरे की रान के अलावा दुनिया की किसी दूसरे चीज से दिलचस्पी नहीं रह जाती थी। लेकिन हमीद तो बोर ही हो रहा था। पता नहीं वो कब महसूस कर बैठे कि उसका पेट भर चुका है और फिर लड़खड़ाता हुआ रक्स गाह में पहुंच जाए। बहुत ज्यादा खा जाने के बाद अमूमन उसकी हालत शराबियों की सी हो जाया करती थी और शायद वो खोपड़ी के बजाय मैदे से सोचने लगता था। हमीद नहीं चाहता था कि कासिम के मैदे का बार उसके जहन पर पड़े, लिहाजा उसकी बोरियत बरहक थी। वो करता भी क्या, टेकमगढ़ का सबसे ज्यादा बारौनक नाइट क्लब था और यहाँ अमूमन ऊंचे ही किस्म के लोग होते थे। जाहिर है उनके साथ इतनी ही ऊंची औरतें भी आती होंगी। अंग्रेजी की कहावत है कि शैतान का ख्याल आते ही शैतान सर पर मुसल्लत हो जाता है। कासिम के सिलसिले में भी यही हुआ। उसके मुतालिक सोचता ही था कि वो अपने पहाड़ से वजूद समेत वहां मौजूद था। हाय, तुम अकेले बैठे हो प्यारे, उसने हमीद के शाने पर हाथ फेर कर कहा। ये क्या बेहूदगी है, तमीज से बैठो, हमीद उसका हाथ झटकता हुआ बोला। कासिम झेप कर इधर उधर देखने लगा। ना जाने क्यों उसे ख्याल पैदा हुआ कि कहीं हमीद की झड़की किसी ने सुन ना ली हो, वरना उसकी परवाह नहीं होती थी कि कौन उससे किस लहजे में गुफ्तगु कर रहा है। फिर हमीद ने उससे बैठने को भी ना कहा। प्यारे आखिर नाराज क्यों हो, कासिम खलाफी तवक्का खगियाया। ओ बाबा, क्यों मौत आई है, हमीद चढ़कर बोला। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि कुछ लोग मुझे कत्ल कर देने के चक्कर में हैं? अगर कोई गोली तुम्हारी तरफ भूल पड़ी तो तुम्हारी कंवारी हानम हमेशा के लिए खुशहाल हो जाएंगी। मैं उसे कभी खुशहाल नहीं होने दूंगा, कासिम घुराया। लिहाजा चलते फिरते नजर आओ, यानी मैं तुमको यहाँ खतरे में छोड़कर चला जाऊं? नहीं हमीद भाई, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं इन सालों का खून पी जाऊंगा कोई नजर भी आए तो। नहीं, तुम्हारी मौत मुझे बहुत गरेजा गुजरेगी गुजरने वाली गुजरने दो। साली को मैं मौत वौत की परवाह नहीं करता। लहा अच्छा तो मरो, हमीद ने झल्लाकर मेज पर दो हत्थर चलाया और कासिम ही करता हुआ बैठ गया। दफतन माइक्रोफोन की मौसीकी ऐसी मालूम होने लगी जैसे बहुत से कुत्ते के पिल्ले चीख रहे हों। रक्स थम गया और लोग इस तरह खड़े हो गए जैसे बड़ी बहुत बड़ी मुसीबत आने लगी हो। ये शोर बदस्तूर जारी रहा, हालांकि साजंदों ने भी अपने हाथ रोक लिए थे। आहिस्ता आहिस्ता वो शोर कम होता गया। किसी ने अंग्रेजी में कहा, मैं डॉक्टर हरमेन आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हो रहा हूँ। मुझे अफसोस है, मैं आपकी तफरीहात में मुखल हो रहा हूँ। मेरी वजह से सारे मुल्क की ब्रॉडकास्टिंग में रखना पड़ता है, मगर फिर बताइए मैं आप तक अपने ख्यालात कैसे पहुंचाऊं? मैं अमन का पुजारी हूं। मैं चाहता हूं कि साइंस की तरक्की इंसानियत की फलाह के लिए काम आए। मैं चाहता हूं दुनिया के बेहतरीन दिमाग तकरीब की राहों से हट जाएं। एक बार फिर सुनिए, मैं कौन हूँ? मैं आपका खादिम डॉक्टर हरमैन, जर्मनी के उन गिने चुने साइंसदानों में से हूँ जिन पर नाजी फौज की हाजियत का दारोमदार था। लेकिन आप यकीन कीजिए कि पिछली जंगे अजीम की तबाहकारियों ने मुझे गहरा सदमा पहुंचाया था। आज भी उसे याद करता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते। फिर जर्मनी की शिकस्त के बाद जफाताहीन ने जर्मनी की दौलत और जमीन के साथ साथ आदमी भी बांटने शुरू किए तो मैं किसी ना किसी तरह बच कर निकल आया। अब मैं मशी की पुरसकून और अमन परवर फिजा में सांस ले रहा हूँ। अगर मैं यहाँ बाकायदा तौर पर खुलम खुला कुछ काम करना चाहता तो हुकूमत मुझे कभी इजाजत ना देती। इजाजत देता तो अलग बात, आपकी हुकूमत मुझे कैदी बनाकर इन बड़ी बड़ी कुवतों में से किसी एक के सपोर्ट कर देती जिन्होंने जर्मनी को बांट लिया है। बहरहाल मैंने तहैया किया है कि अब बनी नू इंसान के लिए काम करूंगा। मेरी एक पेशकश कल ही आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएगी, यानी टेकमगढ़ में। आप उससे खौफ ना खाइए, वो आपका खादिम होगा, लेकिन खुदारा उसे पकड़ने की कोशिश ना कीजिएगा वरना नतीजे के आप खुद जिम्मेदार होंगे। बस आपकी खिदमत से फायदा उठाइए, आप उसकी खिदमत से फायदा उठाइए। फिर सन्नाटा छा गया, साजंदों ने सांस छेड़ दिए, माइक काम करने लगा। ये कोई नई बात नहीं थी, इधर 3 माह से अक्सर ऐसे वाकयात रूनुमा हो रहे थे। सारे मुल्क में किसी डॉक्टर हरमैन की आवाज सुनाई देती। खैर, रेडियो का मामला तो किसी हद तक मामूली ही था, लेकिन इस चीज ने खास तौर पर टेक्नीशियंस और मुल्की साइंसदानों को हैरत में डाल दिया था कि उसकी आवाज माइक्रोफोन पर भी सुनाई देती थी। मसलन आप माइक्रोफोन पर किसी लीडर की तकरीर या कोई अच्छा सा रिकॉर्डर सुन रहे हों कि यकायक तकरीर या गीत कुत्तों और बिल्लियों की आवाजों में तब्दील हो जाएंगी और थोड़ी देर बाद आप डॉक्टर हरमैन की आवाज सुनेंगे। डॉक्टर हरमैन, ये नाम तकरीबन हर एक के जहन से चिपक कर रह गया था और पुलिस इस पुरसरार आदमी की तलाश में थी। महकमा सराग रसानी के बेहतरीन दिमाग दिन रात इसी फिक्र में रहते थे कि किसी तरह डॉक्टर हरमैन का ठिकाना मालूम हो जाए। खुद कर्नल फरीदी भी काफी अरसा उसके लिए सरगर्दा रह चुका था, मगर अब उसने इस सिलसिले में दौड़ धूप तरक कर दी थी और किसी ऐसे मौके का मुंतजर था जब डॉक्टर हरमैन से कोई लग्जिश हो जाए। इस वक्त यहाँ इस नाइट क्लब में बैठे बैठे हमीद ने सोचा कि इस वक्त हकीकतन हरमैन से एक लग्जिश हो गई है। आखिर उसने अपनी किसी पेशकश के सिलसिले में खसूसियत से टेकमगढ़ ही का नाम क्यों लिया था? टेकमगढ़ की पहाड़ियाँ, हमीद ने सोचा, इस किस्म के कामों के लिए बहुत मौजू है। हो सकता है वो यहीं कहीं हो, मगर उसकी वो पेशकश क्या होगी? ये साला हरमैन, कासिम बुड़बुड़ाई हुई आवाज में बुड़बुड़ाया। कोई जादूगर मालूम होता है क्यों हमीद भाई? पता नहीं, हमीद ने लापरवाही के इजहार के लिए शानू को जिम्बिश दी। अम्मा वो तुम्हें याद है जो इस वो जो बंदरों को बिन मानस देता था, वो भी तो साइंटिफिक था। साइंटिस्ट, हमीद ने हुरा कर तसी की। अम्मा तुम क्यों पकड़ते हो मेरी जबान? जो मेरा दिल चाहेगा कहूंगा, हाँ नहीं तो। रक्स फिर शुरू हो गया। हमीद को इस बार भी मौका ना मिल सका कि वो किसी रक्स की दरख्वास्त करता। आज तुम मक्खियां मार रहे हो, कासिम ने कुछ देर बाद हंस कर कहा। तुम्हारी नहुसत है, हमीद ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा।